Por isso daí que ele caiu de fechada, né, isso.
بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم علامہ اقبال کی ایک مثنوی ہے پس سے باعث گرد اقوام شرق، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے مطالعے کی کوشش کریں گے. یعنی یہ جو مثنوی کا عنوان ہے یہ بھی خاصا واضح ہے کہ پس سے باعث گرد ہے اقوام شرق. ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے کہ جو غلام تھی، اور علامہ تو پیدا بھی غلامی میں ہوئے اور ان کی وفات بھی غلامی ہی کی حالت میں ہوئی، یعنی جس کو کلونیل پیریڈ کہا جاتا ہے کہ وہ کلونیل پیریڈ ہی میں پیدا ہوئے اور اسی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جب استعمار آ گیا اور مسلمان امت کا زیادہ بڑا حصہ کچھ جگہوں کو چھوڑ کے، ترکی کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، اس کو چھوڑ کے تقریباً پورا عالم اسلام کالونائز ہو گیا، اور یورپی اقوام نے اپنی کالونیز بنا لیں، کہیں پہ برٹش آ گئے، کہیں پورچگیز آ گئے، کہیں جو ہے وہ ڈچ آ گئے، کہیں اٹیلین آ گئے، کہیں فرینچ آ گئے، افریقہ کا بہت بڑا علاقہ ہے وہاں فرینچ آ گئے. تو ایک سوال پیدا ہوا، اور میرا خیال ہے 10-15 سال پہلے ایک بہت مشہور امریکن اورینٹلسٹ ہے برنارڈ لوئس، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا عنوان یہ تھا کہ وٹ وینٹ رانگ، اور وہ مسلمانوں ہی کی ریفرنس سے تھی. چونکہ ایک مسئلہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ مسلمانوں کا کام اس وقت جدید دنیا میں ایک نیوسنس کریٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی انہوں نے پچھلے 2-3، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 300-400 سال سے ان کی کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، اور مار دھاڑ اور فساد اور یہ ان کا کام ہے. تو پھر وہ بھی سوال اس نے اٹھایا کہ بھئی یہ مسلمان قوم، اس کا ماضی ایسا شاندار تھا، اور اس میں جو ہے وہ اسپین کا دور بھی تھا اور بھی بہت سے معاملات تھے، تو یہ یہاں تک کیوں پہنچے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوا ذہن میں، اور ہمارے ہاں سر سید مرحوم سے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی رہی، اور پورے عالم اسلام میں ہر زبان میں لوگوں نے اس سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا سانحہ ہوا کہ ہم جو ہیں کبھی بہت عروج پر تھے اور دنیا کو لیڈ کر رہے تھے اور گورن کر رہے تھے، اور اب ہم جو ہیں وہ ہر جگہ جو ہے بہت ہی پستی میں ہیں. تو اقبال نے بھی اس کو، یعنی مثنوی کا موضوع یہی ہے کہ اقوام شرق اب کیا کرے، اور چونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اورینٹ اور آکسیڈنٹ کی، اورینٹ مشرق کے علاقے، اسی سے اورینٹلزم پیدا ہوا، اور آکسیڈنٹ جو ہے وہ مغرب کو کہا گیا. تو اقبال نے عمومی طور پر، اقبال کے پیغام میں چونکہ ایک وسعت تھی، ایک آفاقیت تھی، تو اقوام شرق کہا ہے، لیکن اس میں بنیادی طور پہ مسلمان اقوام ہی مراد ہیں، کیونکہ وہی اقوام پٹ رہی تھیں، وہی مظلوم و مقہور تھیں کہ جو مسلمان بھی تھے. تو اقبال نے جیسے یہ مثنوی لکھی اور اپنا حل پیش کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح اقبال نے جگہ جگہ رومی سے جو ان کی انڈیٹڈنیس ہے اس کا تذکرہ کیا، ان کو اپنا مرشد کہا ہے، پیر رومی کہا ہے. تو اس مثنوی کا آغاز بھی، اس کے 2-3 اشعار میں شروع اس کے پڑھ دیتا ہوں جس سے کانٹیکسٹ واضح ہو جائے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یعنی یہ تو اس کتاب کے شروع میں ہے کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر. کہ جو پیر رومی ہے وہ ایک مرشد ہے جس کا ضمیر، جس کا باطن روشن ہے، اور عشق و مستی کا جو کاروان ہے اس کا یہ امیر ہے. اور یہ جو اقبال کے یہاں ایک تھیم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سورس آف انسپریشن ہے اقبال کا، اور جگہ جگہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شرمندگی کا اظہار नहीं करते। अब आगे वो बता रहे हैं कि रूमी क्यों मेरे लिए अहम है, रूमी को मैं ये मर्तबा क्यों देता हूँ। तो कहते हैं नूर कुरान दरमयान सीनाश, ये रूमी इनको मैंने मुर्शिद क्यों बनाया है, इस वजह से है कि उनके सीने के अंदर कुरान का नूर है। और जाम जम शर्मिंदाज आईनाश, और उनका जो आईना कल्ब है वो जाम जम को भी शर्मिंदा करता है। यानी वो जो एक तसव्वुर था ना कि जमशेद का एक जाम था जिसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट करती थी, तो जो एक मोमिन का दिल होता है वो भी गोया अल्लाह ताला की तजल्लियात का मरकज़ होता है, और गोया वो भी बहुत सी चीज़ें देख लेता है। तो इकबाल का भी ये तसव्वुर था ना कि इकबाल भी गोया एक सीयर भी थे, और आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर इकबाल जो है वो दिखा देते थे, और ख़ुद कहा भी उन्होंने कि देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो एक विजन पैदा होता है जो एक बातनी बसीरत से पैदा होता है। और मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि इकबाल ने कई जगह ये बात कही है। एक जगह फारसी में कहा ना कि चुन रूमी दर हरम दादन अजामन, कि मैंने भी हरम में मुसलमान उम्मत में रूमी की तरह मैं भी आज़ान दे रहा हूँ। अजुन आमोख्तम असरार जामन, और मैं उससे मैंने सीखे हैं असरार जान, यानी बातिन के जान के असरार राज मैंने उससे सीखे हैं। बेदौरे फितने असरे कोहन उ, कि वो रूमी क्या था, वो असरे कोहन पुराना दौर जो था उसके फितनों का वो तोड़ उसके पास था, तरियाक उसके पास था। बेदौरे फितने असरे रवामन, और इस जदीद दौर के जो फितने हैं उसका इलाज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये एक सवाल के मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, उसका सबब क्या है। एक और जगह भी उसने कहा कि शब पीशे खुदा बगरिस्तम जार, कि एक शब जो है खुदा के सामने मैंने बड़ी जारी की, बड़ा रोया धोया, और मुसलमाना चरा खारंद दो जारंद, कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ है, इतने जलील व खार क्यों हैं। तो कहा कि निदा आमद नमी दानी के इन कौम, एक आवाज़ आई कि तुम नहीं जानते कि ये कौम, इस कौम का मसला क्या है, कि दिले दारत व महबूबे नदारत, कि इसके पास दिल तो है लेकिन महबूब कोई नहीं। यानी असल में इंसान को अल्लाह ताला ने दिल दिया था इसलिए कि वो अल्लाह ताला को अपना महबूब बनाए, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करे, लेकिन उसने उस चीज़ को छोड़ दिया। अभी जो हम हिस्सा पढ़ेंगे उसमें भी इस बात की तरफ इशारा है। और इकबाल का जो सलूशन है वो बहुत रिवायती है, और जगह जगह वो कहता है कि हमारे लिए इलाज क्या है, हमारे लिए इलाज वही है, वही देरीना बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आब निशात अंगेज़ है साकी। तो वो आब निशात अंगेज़ यानी कुरान मजीद, अल्लाह की किताब, जिसने इस उम्मत के पहले हिस्से को ज़िंदा किया था। ये इस तरह के अकवाल हमारे यहाँ मिलते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इमाम मालिक से इस मफहूम के अकवाल मिलते हैं ना, कि इस उम्मत के आखिरी हिस्से की भी इस्लाह मुमकिन नहीं है मगर उसी तरीक पर जिस तरीके पर पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी। तो पहले हिस्से के का जो बुनियादी इम्पिटस था वो क्या था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद, यानी कुरान और साहिब कुरान। इसीलिए इकबाल का जो सलूशन है वो भी यही है। एक और जगह उन्होंने कहा ना कि मकाम खेश, अगर तुम चाहते हो मकाम खेश गर खाही दरी दैर, इस दैर में इस बुतकदे में अगर तुम कोई मकाम चाहते हो, कोई मर्तबा चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है कि बहक दिल बंदो राह मुस्तफ़ा रहो, कि हक ताला से अपना दिल लगा लो, अल्लाह ताला से अपना दिल वाबस्ता कर लो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पे चल पड़ो। तो इकबाल इस लिहाज से बहुत अहम है। और फिर ये जो थोड़ा सा हिस्सा है जो हिकमत फिरौनी है, इससे पहले छोटा सा हिस्सा है उसका नाम है हिकमत कलीमी। हम ये देखते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी जो तलमी है उनका तस्करा इकबाल की शायरी में बहुत है, और इस तरह हम ये समझते हैं कि इकबाल की शायरी उसमें कुरान मजीद की जो थीम्स है ना उनका परतव मिलता है। तो अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो वहाँ भी आपको लगेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस पैगम्बर का तस्करा सबसे ज़्यादा है वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। और इस नस्बत से भी है कि जो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि लत तबयान न सन मन कान कबलकुम, कि वो लोग जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं तुम उनकी सुन्नत की, उनके तरीके की, रास्ते की पैरवी करोगे। ऐसी पैरवी ऐसी कि शिबरम बिशिबरिन व ज़िराम बिज़िराइन, जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के मुशाबे और एक हाथ दूसरे हाथ के मुशाबे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इकबाल के यहाँ भी कलीम उनका तस्करा है, उस सैयदना मूसा के हवाले से भी कई सिंबल्स वो बयान करते हैं ना। एक एक कलीम के हवाले से जो एक पूरी तलमीहात का तशबीहात का है वो तूर है, सीना तूर तजल्ली, वो एक ख़ास समझ ले फैमिली है। और उसमें क्या है, ताल्लुक माल्ला कुर्ब उसका तस्करा है, ठीक है। और लाजिम है क्या कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो एक तूर का सिंबल है। दूसरा हम देखते हैं उनके यहाँ जो सिंबल है वो यद बैज़ा का है, ये यद बैज़ा है उसकी एक हैसियत है। और कई जगहों पर ऐसे लगता है कि इकबाल कहते हैं कि हमारे पास भी यद बैज़ा है, कहा है ना कि रहे हैं और हैं फिरौन मेरी घात में, लेकिन मुझे क्या डर कि मेरी आस्ती में है यद बैज़ा। और वो जो फारसी में कहा ना कि तुम्हारी तो अपने हाथ में वो है, कि खारस महजूर ये कुरान शुदी, कि तुम जो है कुरान मजीद को छोड़ के जलील व रुस्वा हो गए हो, और शिकवा संजय गर्दिश दौरा शुदी, गर्दिश दौरा आसमान का खेल और तकदीर उसको तुम जो है वो शिकवा करते हो। ऐ चो शबनम बर ज़मी उफ्तंदई, ऐ वो कौम के जो ज़मीन पर शबनम की तरह पड़ी हुई है, पामाल है, हर कोई उसको अपने पाँव से रोंद रहा है। दर बगल दारी किताब जिंदई, कि तुम्हारी बगल में एक किताब जिंदा है, तुम्हारे पास भी एक यद बैज़ा। तो यद बैज़ा ऐसा लगता है कि कुरान इल्म उसका सिंबल है। लेकिन एक और सिंबल भी है, और वो क्या है, वो असा है। आप देख रहे हैं कि असा न हो तो कलीमी है कार बे बुनियाद, या एक और जगह जो कहा है कि लाख हकीम सर बजैब एक कलीम सर बकफ, कि एक लाख हकीम जो हैं वो अपना सर निवड़ाए अपने गरीबान में डाले और फिक्र कर रहे हैं, इसके मुकाबले में एक कलीम हो जो सर बकफ हो। तो इकबाल के यहाँ ये जो दो चीज़ें हैं ना, इल्म और ताकत, इल्म और ताकत, ये थीम हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और जदीद दुनिया में भी लोग यही कहते हैं कि नॉलेज एंड पावर, ये दो चीज़ें हैं जो लोगों को ऊपर लेके जाती हैं। अगर आप मगरिब को भी देखें कि मगरिब जिस तरह इसको गलबा है, उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा उसके इल्म की वजह से है, लेकिन उस इल्म से जो उसने ताकत हासिल कर ली है, अब वो ताकत है जो गवर्न कर रही है, ठीक है ना। तो अब जाहरी बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह जो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हा दे घर दाने होना दे कमले भी से आने, कि जिनके पास दाने होते हैं ना उनके जो है आप बिल्कुल ही कमले और बिल्कुल झल्ले टाइप लोग जो हैं वो भी सयाने हो जाते हैं। तो आप देखिए कि उनकी हर चीज़ चल जाती है, तो वो कुव्वत के ज़ोर पे चलती है, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं होता कि लोग उसको बहुत समझ बूझ के और पूरे शऊर के साथ उसको कबूल करें। तो एक तो आप देखिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो सिंबल है वो बयान करते हैं कि ताकत, ताकत बहुत ज़रूरी है, कुव्वत बग़ैर बहुत ज़रूरी है, उसके बग़ैर जो है वो दीन भी एक फ़लसफ़ा और वाज बन के रह जाएगा जब तक कि उसके पास गलबा ना हो, उसके पास कुव्वत ना हो और ताकत ना हो। फिर आप देखिए एक और चीज़ है इकबाल के यहाँ, और वो ये है कि एक डायलेक्टिक्स है, हक और बातिल का एक मार्का है। और जाहिर बात है इकबाल की फ़िक्र पर हेगल की फ़िक्र के भी असरात थे, कि एक हेगेलियन डायलेक्टिक्स होती है, कि एक थीसिस पैदा होता है, फिर एक एंटी थीसिस होता है, फिर उसका सिंथेसिस होता है। तो हम देखते हैं कि इकबाल के यहाँ भी हक और बातिल उसके सिम्बल्स हैं, वो पेयर्स में होते हैं। आप देखें एक सिम्बल इकबाल के यहाँ क्या है, आदम और इबलीस, ठीक है ना, वो एक सिंबल है, एक वो जो है लड़ाई चल रही है इबलीस और आदम। दूसरी सिंबल उनके यहाँ एक और क्या है, वो आप ये कह लीजिए फिरौन और कलीम, ये एक और सिंबल है। उससे पहले इब्राहिम और नमरूद, यानी आप देखें ना इनका तस्करा, इब्राहिम का तस्करा, नमरूद का तस्करा, फिर मूसा और फिरौन का तस्करा, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू लहब, यानी ये जैसे पेयरिंग वो करते हैं। और जो कहा है ना कि सतीजा कार रहा है अजल सिता इमरूस, चराग मुस्तफ़वी से शरारे बूलहब, यही वो डायलेक्टिक्स है, कि एक तरफ जो है वो चराग मुस्तफ़ा है, अहले हक हैं, आदमियत है, खलीलियत है, कलीलियत है, और नबी मोहम्मदियत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक तरफ ये लाइन चल रही है कि इबलीस है और उसके बाद जो है वो नमरूद है, उसके बाद फिरौन है, और उसके बाद बू लहब है। और इकबाल ने इसका शिकवा भी किया है कि अब जो है मुस्तफ़वियत जो है वो कम होती जा रही है और बू लहबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। एक जगह उन्होंने कहा दर अजम गर्दीदनो हम दर अरब मुस्तफ़ा नायाब अज़ा बू लहब। मैं अरब में भी घूमा, मैं अजम में भी पूरी तरह घूम गया, लेकिन ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी ये है कि मुस्तफ़ा नायाब, मुस्तफ़वी नस्बत रखने वाले लोग नायाब हैं और बू लहबी नस्बत रखने वाले अज़ा हैं, चाहे वो लोग उम्मत मुस्लिमा में हों या गैर उम्मत मुस्लिमा में हों। वो मुसलमान जैसा नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद है कि जिनका शजरा अगर आप मिलाएं ना, इल्मी और फिक्री शजरा, तो वो रसूलुल्लाह से नहीं मिलता, वो अबू लहब से मिलता है, उन औसाफ से मिलता है। तो एक तो ये बात है। फिर एक और बात जो इसमें है वो ये है कि इकबाल के यहाँ इस बात का बड़ा बड़ा ज़ोर है कि हम शर को समझें और शर की कुव्वतों की तफहीम पैदा करें। ये हमारे यहाँ है ना, सैयदना उमर की तरफ भी एक कॉल मनसूब है कि भाई जो शख्स शर से नहीं वाकिफ होगा वो इस्लाम की कड़ियाँ बखेर देगा, या हमें शर को समझना है किस लिए, ताकि शर से बच सके। आप देखिए ना कि पूरा पूरी एक जो है इकबाल की नज़म है इबलीस की मजलिस शुरा, वो क्या है, वो यही है ना कि भाई इबलीस की क्या क्या चालें हैं, कैसे मकर कर रहा है, कैसे फरेब दे रहा है। तो इसी तरीके से फिरौन, अब ये जो है ना हिकमत फिरौनी, ये जो हमारे पास हिस्सा है, सेगमेंट है, उसका नाम क्या है, हिकमत फिरौनी। तो ये समझना कि भाई शर की जो कुव्वतें हैं उनके डिज़ाइंस क्या हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, उसको समझना, ताकि समझ के उसको काउंटर किया जा सके, ये बहुत अहम है। और आप देखें ना, कदीम ज़माने से जो कहा जाता था ना कि इल्म जो है, इल्म के बड़े बड़े जो रुख क्या थे, एक तो था कि नो दाय लॉर्ड, अपने खुदा को अपने मालिक को जानो, ये इंसान का सबसे बड़ा मसला है और होना चाहिए, मारिफत इलाही मारिफत रब। दूसरा एक कहा जाता था नो दाय सेल्फ, वो जो ग्रीक जो है ग्रीस के अंदर जो डेल्फी का ऑरेकल था, जो मंदिर था, उस पर यह चीज़ लिखी हुई थी, कंधा थी ये बात, नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो, मारिफत खेश मारिफत नफ्स, ये बड़ा इकबाल के यहाँ भी थीम है। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत अहम है, और वो क्या है, नो दाय एनिमी, अपने दुश्मन को पहचानो, अपने दुश्मन को जानो, ठीक है, और ताकि उसके जो चालें हैं, उसके जो मकर हैं, उसको तुम काउंटर कर सको। तो इसी वजह से इबलीसियत क्या है, फिरौनियत क्या है, इसको समझना। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपके सामने आएगा कि जो कुछ इकबाल बता रहे हैं कि ये हिकमत फिरौनी है, वो आपको गया जदीद दौर में नज़र आ रही है, चाहे उसको जदीद मगरिब कह लें, जदीद तहजीब कह लें, जो बदतर तहजीब है वो हमारे अंदर ये औसाफ पैदा कर रही है। अब इसका जो उनवान है हिकमत, हिकमत का दोनों मतलब है यहाँ पे, एक हिकमत का मतलब है दानिश, दानाई, कि उनका उनकी दानिश क्या है, उनकी फरासत क्या है, और दूसरी हिकमत का लफ्ज़ बोला जाता है स्ट्रेटजी के मानों में, यानी दो होती है ना, एक हिकमत इल्मी होती है और एक हिकमत अमली होती है, यहाँ दोनों मुराद हैं, कि एक जो है बातिल कुव्वतों की हिकमत इल्मी है और एक हिकमत अमली है, दोनों जुड़ी हुई हैं। तो अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं कि हिकमत अरबाब दी करदम आया, हिकमत अरबाब की राहम बिदा, कि अरबाब दीन की जो हिकमत है, जो दानिश है, जो स्ट्रेटजी है, वो तो मैंने ज़ाहिर कर दी। इससे पहले जो है वो हिकमत कलीमी के नाम से कह रहे हैं कि मैं वो तो मैंने बयान कर दी कि हिकमत कलीमी क्या है, ठीक है, दीन कुव्वत का क्या तसव्वुर रखता है। और मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि सैयदना मूसा के यहाँ के दीन इल्म और कुव्वत इसका इज्तिमा है। तो कहा हिकमत अरबाब की राहम बिदा, और अरबाब कीना दोज मकर करने वाले खबीस नफ्स लोग, उनकी जो हिकमत है अब वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो कौन लोग हैं, यानी फिरौनी है, यानी वो तो फिरौन तो एक सिंबल है ना, फिरौन किस चीज़ का सिंबल है, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत का, और अपनी जो ज़ात है, अपनी जो कुव्वत है, उस पर इतना एतमाद कि रब को भुला दे। यानी ये जो ख़ास तौर पर जदीद जहन है ना, मगरिब तो इसका शाहकार है कि भाई अब हमें खुदा की ज़रूरत थोड़ी ही रही है, ये तो पुराने लोग थे, जो बेचारे मकहूद थे, मजबूर थे, और जो नेचुरल फोर्सेस थे उसकी जद में आ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई असल में कोई खुदा है जिसके आगे झुकना चाहिए, जो हमें इससे बचाएगा और ये करेगा और वो करेगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम एक ऑटोनोमस बीइंग हैं, और अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो जो कुव्वतें खुदा से मंसूब की जाती थी, अब हमने वो हासिल कर ली। फिरौन ने भी तो यही कहा था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, और कहा कि हाजिल अनहार मिन तहती, कि ये जो सारा नहरों का निज़ाम है वो मेरे इख्तियार में है। तो ये जो एक इद्दिया है ना, ये जो एक खुद एतमादी है झूठी, वो जदीद मगरिब के अंदर भी पैदा हो गई है, और उसका असर ये है कि मुसलमानों में से भी बहुत से लोग हैं, उनका यही होता है यार, क्या हर चीज़ में दीन को घुसड़ी जा रहे हैं। आदमी को ख़ुद पे एतमाद करना चाहिए, फ़लाँ चीज़ आ गई, अल्लाह ताला नाराज़ हो गए हैं, अल्लाह ताला लगता है कि गज़बनाक हैं, इस्लाह करो, ये क्या मतलब है। बस हमारी तदबीर है, और हम जो है जो करेंगे वो हमारे सामने आएगा। ये बार बार क्या हमें आप तकदीर की बातें बताते हैं, बस हम हमारे हाथ में हमारी तकदीर है, हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, खुद ही तय करते हैं। तो ये जो एक ख़ास तरह का एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सेल्फ हेल्प का तसव्वुर है, यह एक झूठी जो है एतमाद पैदा किया जाता है कि अब हमें किसी आसमानी कुव्वत की ज़रूरत नहीं है, हम अपने सारे मामलात खुद ही समेट लें। आगे कहते हैं, हिकमत अरबाब की मकरफन तखरीब जान तामीर तन, कहा कि जो अरबाब की हैं, ये जो फिरौनी हैं, इनकी हिकमत, इनकी दानिश, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, मकरफन, मकरफन है, हीला है। एक तो ये है कि इसमें इल्म का पहलू कोई नहीं, फ़न है। अब ज़ाहिर बात है इल्म जो है वो हुनर में बदलता जा रहा है। आपको मालूम है रिवायती मानों में इल्म का मकसद था इंसान की शख्सियत, उसको परवान चढ़ाना, उसके अंदर अखलाकी हिस्स को बेदार करना, उसको अपने रब से जोड़ना। और फ़न का मतलब होता था दुनिया हासिल करना, दुनिया में के लिए जो है कोई स्किल पैदा करना। तो पहले ये चीज़ें अलग अलग थी। आपको मालूम है हमारे दीनी मदारिस में इल्म दीन सिखाया जाता था, उसका मकसूद तो लिल्लाहियत पैदा करना, तकर्रुब इलल्लाह, और कुछ पेशे सिखाए जाते थे, तबाबत सिखाई जाती थी, हिकमत, ठीक है, और खत्ताती सिखाई जाती थी, कई जगहों पे तरखान का काम, इस तरह का काम, कि भाई ये तो इल्म है, इसका ताल्लुक़ तो खुदा रसीदगी से है, इसका ताल्लुक़ मारफत इलाही से है, और ये पेशे हैं, ये हुनर है, ये फ़न है, ये आपको दुनिया सीखने के लिए, दुनिया पाने के लिए दरकार है। लेकिन अगर आप अब देखें तो अब क्या हो गया है, अब तो इल्म का मकसद भी माश ही है ना, यानी इल्म को हमने माश से ऐसे जोड़ दिया है कि अब आप जदीद इदारों में देखिए, वहाँ जो लोग जाते हैं उनका मकसूद कोई सीखना, कोई अपने आप को बुलंद करना, कोई अपनी एथिकल सेंस को ग्रो करना थोड़ी होता है, कुछ स्किल्स हासिल करनी है, कागज़ का एक टुकड़ा दरकार है जिसकी बुनियाद पर उनको कोई नौकरी मिलेगी या दुनिया कमाने का उनके लिए ज़रिया बनेगा। तो इकबाल ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में इस पर तनकीद की है, जो कहा ना कि वो इल्म नहीं मौत है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल हो जहाँ में दो कफ़े जौ, यानी दो जो है मुट्ठी जौ जिस इल्म का हासिल हो ना, रुपया पैसा, वो इल्म नहीं है, वो तो मौत है। और उसके मज़ाहिर हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द हर तरफ कि अब इल्म नाम की चीज़ कोई नहीं रह गई ना। अब ज़ाहिर बात एक कागज़ का टुकड़ा डिग्री के नाम से चाहिए जो आपको दुनिया में कामयाब करने के लिए ज़रूरी है। तो कहा कि ये मकरस तो फ़न है, और क्या मकर फ़न है, तखरीब जान तामीर तन, यानी ऐसी ज़बरदस्त ये बात है कि जदीद इल्म का, जदीद फ़न का हासिल क्या है कि इंसान की जो जान है वो बर्बाद हो जाए और तन आबाद हो जाए, यानी वो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है या उसकी जो एथिकल और मॉरल सेंस है वो कुचली जाए, वो ख़त्म हो जाए, और जिस्म को बनाने संवारने उसके ज़राए बढ़ते चले जाए। एक और जगह कहा ना कि एक जगह कहा है कि मैं तुमसे साफ ये बात कह दूं कि फरंग क्या है। उसने कहा कि फरंग दिल की खराबी, खिरद की मामूरी। फरंग किस चीज़ का नाम, दिल खराब का मतलब होता है उजड़ना, तो कि दिल उजड़ जाए और अकल बहुत तेज हो जाए, बहुत शार्प हो जाए, वर्ल्डली वाइज आप हो जाएं, और जिस्म को सजाने बनाने या उसको जो है ग्रो करने की सारी स्किल्स आपके पास हों, लेकिन मेरे अंदर कोई रूह भी है, मेरे अंदर कोई डिवाइन स्पार्क भी है, मेरे अंदर कोई कल्ब भी है जो मुझे दिया गया था अल्लाह से ताल्लुक के लिए, वो क्या है उसकी अब कोई अहमियत नहीं। तो कहा कि उनके इल्म का हासिल क्या है कि वो जो जान है, वो जो रूह है, वो बिगड़ जाए, बर्बाद हो जाए और जिस्म वो परवान चढ़े। हिकमत अज बंदे दी आज़ादे अज मकाम शौक दूर उफ्तादे। इसकी हिकमत, इसका इल्म क्या करता है, इंसान को दीन के की जो जकड़बंदी है ना, उसके जो बंद हैं उससे तो आज़ाद करता है और मकाम शौक अल्लाह से ताल्लुक़ अल्लाह से मोहब्बत उससे कहीं बहुत दूर फेंक देता है। ये कितनी अहम बात है कि जदीद इल्म या जदीद तहज़ीब की सबसे बड़ी कदर क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑटोनमी, कि हमें हर तरह के जबर से अपने आप को आज़ाद करना है, मज़हब के जबर से, ख़ानदान के जबर से, रिवायत के जबर से, अखलाक के जबर से। तो कहा कि ये क्या कर रहा है कि इसको दीन के जो बंद हैं उससे आज़ाद कर रहा है। लेकिन लोग इसको नहीं समझते कि दीन के बंद से आज़ाद करने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो आज़ाद होता है, वो ज़्यादा ग़ुलाम हो जाता है। मुझे काजा इकबाल ने कहा ना कि हज़ारा बंद दर आज़ादी उस्त, ये जदीद तहजीब जो है इसकी आज़ादी में हज़ार बंद हैं। हमारा क्या ख्याल है कि मगरिब का जदीद आदमी कोई आज़ाद है? वो बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है। उसकी आपको मालूम है कि जो लीगल फ्रेम वर्क है वो घर के अंदर बेडरूम तक पहुंचा हुआ है। यानी आपको मालूम है कि मगरिब में हर साल कई हज़ार तलाक़ें इस बात पर हो जाती हैं कि खातून इस बात पे केस कर देती है कि मेरा शौहर जो है वो खराटे लेता है और मुझे नींद नहीं आती, मुझे इससे तलाक दिलाई जाए। तो वो बाकायदा आगे इसको गवर्न करते हैं, इसको देखते हैं। आपका कुत्ता अगर एक ख़ास मकदार से ज़्यादा भोंकने लग जाए तो आपका कुत्ता, वो पहले आपको वार्निंग देंगे कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर आप कुत्ता खुल के ले जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि वो आज़ादी है? यानी आप, और ये जो अभी ज़ाहरी बात है कि अमेरिका का सदर बना है, अमेरिका का सदर तो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होता है, उसके बारे में तय होता है कि ये इन चार लोगों से फ़ोन पर बात कर सकता है, उससे ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकता। वो अपनी बीवी से भी जब बात कर रहा होता है उसकी एक एक चीज़ कई लोग सुन रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये हमारा ख्याल है कि मगरिब ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, लेकिन असल बात यह है कि बस आज़ादी उसने दीन से दिलाई है, अल्लाह से दिलाई है, वरना तो इंतहाई सख्त जो है वो जकड़मंदी के अंदर उसको डाल दिया। तो कहा कि उसने दीन के बंद से आज़ाद कर दिया है और अल्लाह से मोहब्बत और उसका जो शौक़ है उससे दूर फेंक दिया है। मकतबस तदबीर ओ गीरत निज़ाम ताबकाम ख्वाजा अंदेशत ग़ुलाम। और कहा कि उसकी उनकी तदबीर से एक ऐसा मकतब जो निज़ाम तालीम है, वो ऐसा निज़ाम तालीम जो है उससे मिलता है जिससे होता क्या है कि ग़ुलाम आकाओं के मफाद के मुताबिक हो जाते हैं। ये उस वक्त भी बात ठीक थी जब इकबाल कह रहे थे और आज भी ठीक है। यानी जदीद तालीम आपको मगरिब का और कैपिटल का ग़ुलाम बनाने के सिवा क्या कर रही है? जो आदमी जितना जदीद तालीम याफ्ता होता है वो उतना ज़्यादा मगरिब से मरूब होता है और वो उन्हीं को माई बाप समझता है, उन्हीं को आइडियलाइज करता है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि मैं तो चूँकि एकेडेमिया में हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे पता है कि जदीद तालीमी निज़ाम एक इम्पीरियल प्रोजेक्ट है। वो इस्तेमाल ख़त्म नहीं हुआ और पहले कॉलोनाइजेशन ऑफ द बॉडी थी, अब कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड है। और ये ज़्यादा आसान है, आप आए आके फौजें रखें और लड़ें, लोग बगावत भी कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तालीमी निज़ाम के ज़रिए आप उनको जकड़बंद कर दें, अपना ग़ुलाम बना लें। वो जो मशहूर शेर है ना कि तूने अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है, मतलब वेस्ट ने हमें जो छोड़ा है तो अपना बना के छोड़ा। और अपना बनाने में सबसे अहम चीज़ क्या है? वो तालीमी निज़ाम है। तो वो तालीमी निज़ाम हमें अभी तक उन पुराने आकाओं का ही ग़ुलाम बनाता। तो कहा कि शेख मिल्लत बा हदीस दिल नशीं बर मुरादे ऊ कुनत तजदीद दी। ये भी क्या ज़बरदस्त बात है, क्या जुमला है। नहीं लगता है कि ये शायरी जैसे इल्हामी शायरी है, और अगर उस वक्त जितनी लगती थी कि रेलेवेंट है, आज उससे ज़्यादा रेलेवेंट है। कि क्या कह रहे हैं कि इस मिल्लत के जो शेख हैं, वो जो उलमाए सू हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बहुत दिल नशीं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके बर मुरादे ऊ कुनत तजदीद ही, उसकी मुराद के मुताबिक दीन की तजदीद कर रहा है। किसकी मुराद के मुताबिक? फिरौनी हिकमत की। तो आज ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स पैदा हो गए हैं जो दीन को टेलर कर रहे हैं मगरिब की मंशा के मुताबिक। वही लोग मारूफ होते हैं, वही लोग मशहूर होते हैं, उन्हीं को मीडिया में जगह मिलती है जो किसी तरीके से वेस्ट के मुताबिक दीन की कतर बेवंद करके आपके सामने पेश कर दें। नहीं 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 नहीं, इस दीन में जिहाद थोड़ी है, जिहाद तो होता ही नहीं है। जिहाद अगर है भी तो वो दिफाई है, इकदामी थोड़ी। औरतों की आज़ादी, इस्लाम से ज़्यादा किसने औरतों को आज़ादी दी? और टॉलरेंस, इस्लाम से बढ़ के टॉलरेंस किसकी है? ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स तो हमने दिए हैं दीन को, या आपने गुफ्तगू सुनी है? तो ये क्या है, ये असल में टेलर कर रहे हैं इस दीन को। तो वो तो अब ज़ाहिर बात है कुरान मजीद के लफ्ज़ों में तहरीफ मुमकिन नहीं है, लेकिन आप उसके तर्जुमे पढ़ें, अब उसकी जदीद तफसीरें पढ़ें जो यहाँ पर भी हो रही हैं, मगरिब में भी हो रही हैं, तो साफ लगता है कि मगरिब को अपीस करने की कोशिश हो रही है और मगरिब को खुश करने के लिए दीन की नई ताबीर की जा रही। तो बहुत रेलिवेंट है ये। अज़दमे ऊ वहदत कौमे दुनीम कस हरीफश नीस जुस चौबे कलीम। तो कहा कि इसके दम से, इस हिकमत फिरौनी के दम से ये जो कौम है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कहा कि इसका हरीफ कौन है? इसका हरीफ जो है वो असाय मूसा के सिवा कोई नहीं। यानी वही बात कि ठुक ठुक से कुछ नहीं होना, यानी आप कह रहे हैं कि सुनार की ठुक ठुक से कुछ नहीं होना, इसके लिए लोहार का हथौड़ा दरकार है, कुव्वत से होगा। यानी ज़ाहिर बात है कि मगरिब जो है ना, अब वो कुव्वत ही की ज़बान समझता है। आपका क्या ख्याल है कि वाज कह के, हाथ बांध के और कुरान की तिलावत करके और हदीसें सुना के आप मगरिब से मामला कर लेंगे? नहीं नहीं, बाल कहते हैं इसका इलाज ताकत है। और ये अल्लाह की स्कीम है, अल्लाह ताला की एक स्कीम है कि जब कोई कौम बहुत ताकतवर हो जाती है और फसाद मचाती है तो अल्लाह ताला किसी और कौम को उठाकर उसको गिरा देते हैं। और कहा कि अगर अल्लाह ऐसा ना करे ना तो ज़मीन में फसाद हो जाए, और एक जगह कहा कि तमाम जो मजहबी इबादत गाहें हैं वो बर्बाद हो जाए। तो कहा कि इसका हरीफ जो है वो वाज नहीं है, वो असाए कलीमी दरकार है, कुव्वत दरकार। वाए कौमें कुछ तय तदबीर गैर कार ओ तखरीब खुद तामीर गैर। क्या कौम है कि जो गैरों की तदबीर की कुश्ता है, उसकी जो है वो आप कह लीजिए उसका शिकार है, उसकी गुजीदा है, और उसका हाल क्या हो गया? तखरीब खुद तामीर गैर, अपने आप को गिरा रहे हैं, दूसरों की तामीर कर रहे हैं। अब आप देखिए मुस्लिम दुनिया में जो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का मॉडल है वो क्या है? वो मॉडल मगरिब ही का मॉडल है ना। तो आप देखिए अब तरक्की का क्या मतलब है? तरक्की का मतलब ये है कि आप अपनी अकदार को कंप्रोमाइज़ करें और मगरिब की अकदार को अपनाएं। अब देखें ना, जब भी हमारे मजहबी लोग भी बात करते हैं कि यार मुसलमानों के लिए क्या मॉडल है, मुसलमानों के लिए अगर उम्मत के अंदर से मॉडल ढूंढना है तो वो या तो मलाइशिया का नाम लेंगे, या दुबई का नाम लेंगे, या तुर्की का नाम लेंगे। तो मलाइशिया में दीन की क्या गत बन रही है, कभी इस पर भी गौर करें। स्काई स्क्रेपर्स तो आपने बना लिए, GDP GNP जो आपने बुत बना रखे हैं उनको तो आपने कर लिया, दुबई में क्या हालत है दीन की? यानी दुबई आप जाके देखें, उसके डाउनटाउन जाएं, आपको लगेगा कैपिटलिज्म का इतना नंगा नाच खुद मगरिब में नहीं है जितना आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। वो जो एक साहब ने कहा ना कैथेड्रल्स ऑफ कंजम्पशन बना दिए आपने शॉपिंग मॉल्स वहाँ के, और दुनिया में जैसे घूम कर दिया है। तो आपके यहाँ तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की का मतलब ये है कि अपनी तकरीर करें तब हम, और ज़्यादा जो अब आप तामीर कर रहे हैं वो आपकी अपनी थोड़ी है, वो तो मगरिबी की कर रहे हैं आप, उसी की जो है उसके पीछे हैं, उसके मुताबिक ही आप जा रहे हैं। और कहा कि मी शबद दर इल्म फ़न साहिब नज़र अज वजूद खुद नगर्दद बाखबर। और कहा कि ये मामला क्या है कि आदमी बज़ाहिर इल्म व फ़न में तो बड़ा साहिब नज़र हो जाए लेकिन अपनी वजूद की, अपने आप की या अपनी खुदी की जिसको इकबाल कहते हैं, उसकी कोई खबर नहीं। यानी आप देखें ना कि जो आदमी जितना दुनिया में तरक्की करता जा रहा है वो अपनी ज़ात, अपनी असल, अपनी खुदी से उतना ही गाफिल है। और वो जो खुदी क्या है जिसको इकबाल ने कहा ना कि नुक्ते नूरी ज़िनामे उ खुदीस्त, वो खुदी क्या है? वो एक नुक्ते नूरी है। और कहा कि खाकेमा शरार ज़िंदगी, कहा कि मेरी खाक के अंदर, मट्टी के अंदर ज़िंदगी का एक शरार। तो अब क्या है कि आप दुनिया वर्ल्डली वाइज तो बहुत हो गए हैं लेकिन अपनी रूह की, अपने नफ्स की, अपनी खुदी की कोई फिक्र नहीं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि नक्श हक रा अज नगीन खुद सतुर्द द ज़मीरश आज़ूहा ज़ाद उमर्द, और कहा कि तुम क्या करो, तुम ये करो कि हाँ कि अपनी जो अंगूठी है उससे क्या किया है, उसने हक का जो नगीना है उसको उसने मिटा दिया है। दर ज़मीरश आज़ूहा ज़ाद उमर्द, और उसके ज़मीर में आज़ूएँ पैदा होती हैं और मर जाती हैं। मुझे इकबाल ने कहा जगह कहा कि आज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और वो पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। तो बात यह है कि आज़ूएँ पैदा कौन सी होती हैं, यानी आज़ू तो पैदा होनी चाहिए थी अल्लाह से मोहब्बत की, पैगम्बर से ताल्लुक़ की, आज़ू तो पैदा होनी चाहिए थी इस उम्मत के हवाले से कुछ करने की, लेकिन अब सारी जो आज़ूएँ पैदा हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो दुनिया की रफ़्तार से पैदा हो रही, ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब होने चाहिए, और सारे ख्वाब किससे मुताल्लिक हैं, दुनिया से मुताल्लिक। और कहा कि उसके ज़मीर में आज़ूएँ पैदा होती हैं और आज़ूएँ मरती रहती हैं। बेनसीब आमद ज़ औलाद गयूर जहाँ बतन चू मुर्दा दर खाके गोर, मुर्दे दर खाके गोर, कि उसका मामला क्या हो गया है कि वो गैरतमंद औलाद से महरूम है। अब इकबाल ख़ास तौर पर ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि वो समझ लीजिए कि तकरीबन पहली दूसरी नस्ल थी जो कॉलोनाइज थी, वो इकबाल को लग रहा है कि चले अभी जो पुराने लोग हैं ना, जिनको पुराने चिराग भी कहते हैं, उनमें तो अभी भी अपनी रिवायत का कोई पास है, लेकिन अब जो औलाद आ रही है उसके अंदर तो कोई गैरत दीनी गैरत मिली बाकी नहीं है। और अब हम देख सकते हैं, हम तो उससे बहुत आगे आ चुके हैं ना, अब मामलात ऐसे ही हैं। और ये कितना हम देखते हैं कि वालिद जो है वो तहज्जुद गुजार है और बेटा जो है वो जुमा पढ़ने को तैयार नहीं, ये हमारे सामने। और हम ये देखते हैं कि खातून जो हैं वालदा हैं वो तो बुरके में मलबूस हैं और साथ बेटी जा रही है वो टाइट जीन्स में और जो है वो स्लीवलेस में फिर रही। तो अब ये क्या हो रहा है, यानी एक ऐसी औलाद जो है वो पैदा हो गई है जो इसके साथ ये मामला हो रहा है। और कहा कि उसके बदन में जान ऐसे ही है जैसे जो है मुर्दा होता है कब्र में। ये भी इकबाल का एक थीम है ना, एक जगह उन्होंने कहा है कि रूह से था ज़िंदगी में भी तही जिनका बदन, ये वो लोग हैं कि ये मुर्दा हैं, ये चलते फिरते ताज़िए हैं, ये जैसे ऐसे हैं कि जैसे एक कब्र है और रूह जो है इनके अंदर दम तोड़ चुकी है। अज़ हया बेगाना पीराने कुहन नौजवाना चुन जना मशगूल तन, और कहा कि अब हालत ये हो गई है कि वो इल्म क्या चाहता है, हिकमत फिरौनी क्या चाहती है कि भाई इसके जो पीराने कोहन हैं बूढ़े हैं वो भी हया से फारिग हो जाएं। यानी ज़ाहिर बात है कि नौजवानों के अंदर तो ज़ाहिर बात है कि एक अर्ज होती है ना, और उनके यहाँ तो जिनसी जज्बा भी बहुत मुँहज़ोर होता है, तो उनके यहाँ ख़राबी पैदा हो जाए तो उसका फिर सबब भी है। लेकिन कहा कि अब हालत हो गई है, ये तहज़ीब ये चाहती है कि इसके जो बूढ़े हैं वो भी हया से खाली हो जाएं, और नौजवाना चुन जना मशगूल तन, और इसके नौजवान औरतों की तरह तन में मशगूल हो जाए। और ये हम सब देख नहीं रहे, यानी एक ज़माने में क्या था कि ये तसव्वुर था कि सजने बनने का शौक जो होता है वो औरतों को होता है, कुरान मजीद ने भी इसका तस्करा किया है कि भाई उनके यहाँ ये उनकी है तबीयत में शामिल। लेकिन अब मामला क्या हो गया है कि अब नौजवान जो है सजना बनना संवरना वो उसमें आ गया। यानी एक ज़माने में ज़ाहिर बात है कि तसव्वुर ये होता था कि ग्रूमिंग है और ब्यूटी पार्लर्स हैं वो असल में था कि ख़वातीन का इससे ताल्लुक है, लेकिन अब मर्दों के सैलून्स हैं। एक ज़माना था कि ज्वेलरी जो है वो सिर्फ ख़वातीन की होती हैं, अब मेल ज्वेलरी की एक पूरी रेंज है ना, जो उसका पूरी रेंज है आपके सामने है। तो आप देखिए ना कि सजना बनना सजना संवरना उसको मकसूद बना दिया। और ज़ाहरी बात है कि हया से चाहे बेगाना करना हो, चाहे मर्दों को औरतों की तरह जो है तन में मशगूल करना हो, उसका सबसे बड़ा टूल क्या है, वो मीडिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो गोया इस हिकमत फिरौनी का इस दौर में सबसे बड़ा टूल है, और हमारी आंखों के सामने है ना कि ये दोनों चीज़ें इसके अंदर पैदा की जा रही। दर दिले शाह आज़ूहा बेसबात मुर्द ज़ायंद अज़ बुतून उम्महात, कहा कि इनके जो नौजवान हैं इनकी आज़ूओं में सबात नहीं है, और कहा कि ये वो लोग हैं कि जो अपनी माओं के पेट से ही मुर्दा पैदा होते हैं। یعنی مراد یہ کہ آرزوؤں میں ثبات ہی نہیں ہے. دیکھیں چونکہ اب مسئلہ یہ کہ جب آپ دنیا سے دل لگائیں گے, جب آپ صورتوں سے دل لگائیں گے تو صورتیں تو بدلتی رہتی ہیں, ان میں تو کثرت ہے. ثبات پیدا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنا دل اللہ سے لگاتے ہیں, آخرت سے لگاتے ہیں. جبکہ دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ آرزوئیں پیدا کی جاتی ہیں. جدید جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیزائر پروڈیوسنگ مشین ہے. یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا کر رہی ہے؟ نئی نئی آرزوئیں, نئی نئی ڈیزائرز ہر لمحے آپ کے اندر پیدا کر رہے ہیں. آپ کہیں ٹھہرتے ہی نہیں. یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, ہر وقت نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے. آپ ایک موبائل فون کو دیکھ لیں نا کہ موبائل فون میں آپ لیٹسٹ کو لیتے ہیں ہمارے نوجوان یہ لوگ, اور ایک ڈیڑھ مہینے بعد ان کو لگتا ہے اگلا ماڈل آ گیا ہے. اب ان کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پھر اس کے بعد اگلا آ گیا, پھر اس کے بعد اگلا آ گیا, پھر اس کے بعد اگلا آ گیا, تو وہ کہیں ٹھہرتے ہی نہیں. ہر وقت جو ہے وہ مزید کی آرزو ان کے اندر پیدا ہوتی. اور کہا کہ تو لگتا ہے کہ مردہ ہی پیدا ہوتے. اقبال نے ایک اور جگہ کہا نا نوجوانوں کے بارے میں کہ گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے, گرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے, مردہ ہے, مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. اس کا تو سانس بھی اپنا نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے کہ سانس بھی فرنگی سے مانگ کے لے کر آیا. کوئی نہ اس کا اپنا کوئی سیلف امیج ہے اپنے بارے میں, نہ کوئی سیلف جو ہے کانسیپٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز مغرب ڈیفائن کر رہا ہے, بس جیسے وہ کرتے ہیں ویسا کرنا شروع کر دیتے. اب آگے کہا کہ دخترانے او بے زلف خود اسیر, شوخ چشم و خود نما و خود دگیر. کہا کہ اس کی لڑکیاں اپنی زلف کی اسیر ہیں اور شوخ چشم ہیں, خود نمائی کا شوق رکھتی ہیں, اور جو ہے وہ اپنے آپ میں مگن ہیں, اسی میں لگی ہوئی ہیں یا دوسروں کو پرچاتی ہیں. اگلے دو اشعار بھی پڑھ لیں, وہ بھی اسی سے متعلق ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ, ساختہ یعنی بڑی سجی بنی, پرداختہ جو ہے اپنے آپ میں مگن, دل باختہ دلوں کو کھینچنے والی, اور شوخ ابرواں مثلے دو تیغے آختہ, اور ان کے ابرو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے کھینچی ہوئی دو تلواریں. سائد سیمین شاہ ایش نظر, کہا کہ ان کے جو بازو ہیں پہلو ہیں ایسے جیسے چاندی کی طرح ہیں, اور کہا کہ وہ ایش نظر ہیں, وہ جو نظر باز لوگ ہیں ان کے لیے ایک جیسے ایک لذت کا سامان ہے. سینے ماہی بے موج اندر نگر, اور ایسے ہے کہ جیسے کوئی مچھلی کا سینہ انسان پانی کے کی موج کے اندر دیکھے. اب یہ کیا بیان ہے؟ یہ وہ بیان ہے جس طریقے سے, اور یہ اس زمانے میں تو کیا ہوگا جو اب ہے. یعنی ایک جو ہے نا ایک بیوٹی متھ بنا دی ہے, عورت کو ایک سیکس آبجیکٹ بنا دیا ہے, عورت کو سودا بیچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کی عورت شاید سب سے زیادہ مظلوم ہے, جتنی ایکسپلائٹڈ وہ ہے نا اور کوئی بھی نہیں. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. وہاں بیوٹی متھ, آپ نے خوبصورتی کا ایک جعلی تصور پیدا کر دیا. آپ اشتہاروں میں دکھا رہے ہیں کہ ایک ماڈل ہے 20-22 سال کی, اور وہ بچے بھی کھلا رہی ہے, اس کی شوہر بھی ہیں. اب وہ دکھایا کہ جا رہا ہے کہ دیکھیں بیوی تو ایسی ہوتی ہے, حالانکہ نہ وہ بیوی ہے, نہ اس کی شادی ہوئی ہے, نہ اس نے کوئی بچہ جنا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ماڈل ہے نا, وہ تو اداکاری کر رہی ہے, لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے ہمارے اپنے گھروں میں حالات کیا پیدا ہو رہے ہیں, کس طرح کی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کنڈیشننگ ہو رہی ہے. ہر آدمی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا ہے, تمہاری کیا حالت ہے, تم کس چکر میں ہو, تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے, وہ دیکھو جو ہے اس کے تو بچے بھی ہیں, وہ بچے ہیں ہی نہیں اس کے. ایک جعلی ہے نا, ایک آرٹیفیشل لائف ورلڈ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے, اور آپ کو امیج ایسے دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ حقیقی ہو رہا ہے. تو آدمی پھر اپنی اوپر جو ہے شرمندہ رہتا ہے کہ یار میں نے کیا جھک ماری, اصل تو معاملہ یہ تھا, اصل تو زندگی ایسے گزارنی چاہیے تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے سودا بیچنے کے لیے, اور ایسی ایسی پروڈکٹ جس میں خواتین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. یعنی موٹر سائیکل جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں تو وہ بھی خاتون کے بغیر نہیں بیچی جا سکتی. کچھ بھی آپ کر لیں, ایسی چیزیں جن کا خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے دور کا, اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ دجل ہمارے سامنے ہے, صبح و شام ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے, اور یہ ایکسپلائٹیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں مغرب کے لوگ کہ ایک بیوٹی مت آپ نے بنا دی, ایک ماڈل کو معیار بنا دیا, جس سے مغرب کی خواتین کو آپ نے ڈپریس کر دیا. اور یہ ڈپریشن کیا آپ کے معاشرے میں آنی نہیں شروع ہو گئی؟ یعنی رنگ گورا کرنا, اس کا آبسیشن پیدا کر دیا, خوبصورتی کا ایک تصور پیدا کر دیا, جس کی وجہ سے خواتین ہر وقت ڈپریس رہتی, ہر وقت جو ہے ڈپریشن کی شکار رہتی. تو یہ ہے جو مغرب نے کیا ہے, اور خواتین کو اسی طرح کر دیا, دوسروں کا دل لبھانے والی, دوسروں کا دل کھینچنے والی. और मिल्लत खाकस्तर उ बेशरत सुबह उ अर शाम उ तारीख तक, और कहा कि ये एक ऐसी उम्मत है कि जैसे उसकी खाकस्तर में कोई चिंगारी भी नहीं रह गई, लगता है कि बस खाक है और कोई चिंगारी नहीं है, और कहा कि उसकी सुबह जो है शाम की तरह तारीख है, यानी शाम में अंधेरा होता है ना, लेकिन कहा कि सुबह भी तारीख है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इसके बरक्स कि मैं तुम्हें एक ऐसे दीन पर छोड़ के जा रहा हूँ लैलुहा कनहारिहा, कि उसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, लेकिन इस उम्मत का हाल क्या हो गया है कि इसकी सुबहें भी शाम की तरह तारीख हैं। हर जमा अंदर तलाश साज बर्ग कार उ फिक्र माश व तरस मर्ग, इल्हामी अशार है, इन पर थोड़ा सा गौर करें। कहा कि ये जो उम्मत है इसने क्या किया है कि हर वक्त साज़ो बर्ग का मतलब होता है साजो सामान, दुनिया का सामान, हर वक्त दुनिया के साजो सामान की फिक्र में है, और इसका काम क्या रह गया है, माश की फिक्र और मौत से डरना, यानी बस दुनिया तलबी और मौत से डरना। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि एक वक्त आएगा कि जब दूसरी अकवाम तुम पर एक दूसरे को ऐसे दावत देंगी जैसे दस्तरखान पे खाना चुन के कहा जाता है कि आइए खाना तनावुल फरमाइए। तो पूछा कि भाई क्या हम उस वक्त कम होंगे, कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा और तुम जो है जैसे समुंदर के ऊपर तलछट होती है वैसे हो जाओगे। तो कहा कि ये वहन क्या है, तो आपने कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहत, यही दो बातें इकबाल बता रहे कि अब इनका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है, दुनिया हासिल करना और मौत से डरना। और कहा कि मुनिमान उ बखीलो ऐश दोस्त गाफिलस मगजंदो अंदर बंदे पोस्त, कहा कि इसके जो रुपए पैसे वाले लोग हैं जो मुतरफीन हैं उनका मामला क्या हो गया है कि ये बखील हो जाए और ऐश दोस्त हो जाए, और कहा कि ये वही बात अपने मगज अपनी हकीकत उससे गाफिल हो जाए और पोस्त जो छिलका होता है उसके असीर हो जाए, जो बार बार एक बात आ रही कि जिस्म की फिक्र है रूह की फिक्र नहीं। और कहा कि कुवत फरमा रवा माबूद उ दर जयान दीन व ईमा सूद उ, कि जो फरमा बरदार की ताकत है वो उसका माबूद है। अब ये तो एक बात उस वक्त कर रहे हैं जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे, तो कहा कि अंग्रेज़ों की फरमा बरदारी बस उनका दीन है, अंग्रेज़ों की पूजा करना, और ज़ाहिबत ये बात आज भी ऐसे ही है, बदली नहीं। और कहा कि वो दर जयान दीन व ईमा सूद उ, अजीब बात हो गई है कि अब वो ये समझते हैं कि दुनियावी फ़ायदा उसके लिए दीन व ईमान का ज़िया करना पड़ेगा। क्या इस दौर में ऐसा हो नहीं गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दुनियावी तरक्की दीन को एट स्टेक पर रखकर होती है, यानी जो आदमी दुनिया में बहुत तरक्की करता है तो लाजमन उसको दीन व अखलाक के मामलात में कम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि दीन में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दीन को कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी है, जिसको एक बार यहाँ बता दूँ। और कहा कि अज हदे इमरूज खुद बैरून जस्त रोज़गारश नक्श यक फरदान बस्त, और कहा कि आज की जो हद है फौरी मफाद इससे आगे नहीं निकलता, और कहा कि वो उसका जो रोज़गार है उसकी ज़िंदगी का जो मामला है उसमें एक नक्श भी कल का नहीं है, मुस्तकबिल का नहीं है, यानी इसको कहते हैं ना कि द नाउ जनरेशन, इस वक्त ये बताओ फौरी तौर पे, यानी मुसलमान का मामला ये था ना कि फर्दा मुसलमान की दुनिया नहीं है। कुरान मजीद कहते हैं ना कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वल तंजु नफ्सुम मा कदमत लि गद, और देखे हर शख्स कि वो कल के लिए क्या कर रहा है। तो हमारा कल दुनिया नहीं है, हमारा कल आखरत है। लेकिन अब आप देखिए कहते हैं कि इनके यहाँ बस ये लम्हे मौजूद में जीते हैं कि बस आज बताओ आज, और आज का फ़ायदा मरने के बाद क्या होगा ये किसने देखा। और कहा कि अज नयागा दफ्तरे अंदर बगल अज अमा अज गुफ्तहाए बेअमल, और कहा कि वो अपने बुज़ुर्गों अपने पुराने लोगों का के आमाल का दफ्तर लिए घूमते हैं बगल में, और कहा कि अल अमा है और जो है वो ऐसी बातें उससे जो है पनाह है कि जिसमें बातें ही बातें हैं अमल कोई नहीं, यानी जो है पिदरम सुल्तान बूद कि हमारे बड़े ऐसे थे हमारे बड़े ऐसे थे, वो जो शिकवा में इकबाल ने पहले कहा ना कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तो जवाब शिकवा में इकबाल ने कहा ना कि मेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फर्दा हो। तो हमारे आबाओ इधर ऐसे थे, इससे कब तक बात चलेगी? अब बताओ कि तुम्हारे जो है आमाल से वो दफ्तर है तुम्हारे सामने, वो है नहीं, तो बातें ही बातें हैं, करते कुछ नहीं। और कहा कि दीन हु अहदे वफा बस्तन बग़ैर, और उसका दीन क्या बन चुका है कि दूसरों से अहद वफा वाबस्ता करना, यानी अस खिश्ते हरम तामीर दैर, कि हरम की ईंटें लेके बुतखाने को तामीर करते हैं। वही बात कि अपनी रिवायत, अपना इल्म, अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करके कर क्या रहे हैं, गैर को तरक्की दे रहे हैं। वही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमानों के यहाँ तरक्की का हर तसव्वुर वो है जो मगरिब से मुस्तआर है, और मुसलमानों की तरक्की असल में क्या हो रही है, वो मगरिब ही की तरक्की हो रही है, उन्हीं की कामयाबी हो रही है। तो कहा कि हरम से ईंटें लेके बुतखाना तामीर कर रहे हैं। और आखिरी शेर है कि आह कौमे दिल ज़े हक पर दाख्ता, मुर्द मर्गे खेश रा नशनाख्ता, कि आह अफसोस उस कौम पर कि जिसने अल्लाह ताला से अपना हक ताला से अपना दिल हटा लिया, और जो मर चुकी है लेकिन अपनी मौत को पहचानती भी नहीं, इससे बड़ा सानिया क्या होगा। मुझे कहा ना कि आह वाय नाकामी के मताए कारवा जाता रहा, और कारवा के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। तो क्या हुआ, गैरुल्लाह से दिल लगा लिया, और मर चुकी है लेकिन समझती ही है कि ज़िंदा है, उसको अपने मरने का शऊर नहीं। अगर इंसान को जवाल का एहसास हो तो कोशिश करता है, एहतमाम करता है दोबारा ऊपर उठने की, लेकिन अगर इसका एहसास ही ख़त्म हो जाए तो फिर ज़ाहरी बात है इंसान ये कोशिश नहीं करता। तो बहुत मुख्तसर वक्त में तेज़ी से हमने इसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल इसको पढ़ें तो वाज़े वाक़े तौर पर लगता है कि इकबाल वाक़ियतन एक सीयर थे, एक विजनरी थे, और जो बातें उन्होंने इतने साल पहले की हैं वो आज भी बहुत हद तक रेलेवेंट है, बल्कि आज बहुत ज़्यादा नुमाया होकर हमारे सामने आ रही। बहुत शुक्रिया।